हिसाब से सारा व्यक्ति को मैनेज करना पड़ता है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो सूक्ष्म चोरी तो मानी जाएगी,
चोरी तो है लेकिन सूक्ष्म है, इतनी बड़ी नहीं। वैसे तो शावक के लिए अनुव्रत में इतनी चोरी का त्याग है कि दूसरे के घर बंदूक ले जाके अड़ा करके पैसा नहीं ले आएगा, वैसे इतना ही लिखा है। अदत्ता दान नहीं होगा, बस इतना ही।
जैसे जैसे लड्डू उसने खाए और पर डर के मारे नहीं बोल पाया।
आप तो आते ही साथ प्रश्न पूछ रहे हैं, ये लोग तो जो है महीने भर से सुन रहे फिर भी नहीं पूछ रहे। थोड़ा सुनिएगा पहले। तो किस तरह की चोरी? एक तो स्थूल रूप से चोरी, मतलब हम दूसरे के यहाँ डाका नहीं डालने जा रहे हैं, एक चीज। और डाका नहीं डाल रहे हैं या कि किसी के द्वारा बिना दी गई चीज को हम ग्रहण नहीं कर रहे, भले ही उसकी भूल गई थी, ये भी जो है ठीक नहीं है। जो कि वहां तक सुनाई पड़ रहा है
जी।
मनोज जी पीछे आके बैठ गए, लेट आए, बहुत लेट, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था बीच बीच में, बहुत हाँ, अदत्ता दान में भी हाँ, मैं ये कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है ना, रास्ते चलते अपने को रुपए पड़े मिल गए और अपन ने उठा करके गुल्लक में डाल दिए। जनाब ना ये दान है और ना ये आपका कोई उपकार है, ये तो साफ साफ चोरी है। कैसे ही भावना हो लेकिन वो गलत है। वहां से उठाया क्यों आपने? उसके मालिक नहीं है, अपनी हितम पतितम व, गिर गई किसी के पॉकेट से निकल के, वो उठाना नहीं उसका, चाहे जो हो। अरे कोई और उठा लेगा, उठा ले, आप क्यों उठा रहे हैं?
उसका गलत यूज हो जाए वो,
आप किस किस का जिम्मा लेंगे? आपका बेटा शराब पीता है और आपके पैसे लेके जाता है, आप क्या कर लेते हैं आप उसका? जी बताओ, आप जवाब दो, आप इसका जवाब है आपके पास? आपका बेटा, बेटा आपके कितने सारे पैसे खराब करता है, कहाँ कहाँ बर्बाद करता है, आप उसको कुछ कहते हैं? नहीं, आप इसकी चिंता नहीं करें। जो पड़े हुए हैं उस लिखा यही है कि पड़ी हुई चीज उठाना नहीं, क्या पता उसका मालिक कौन है, या आपको मालूम हो, या तो मालिक खोजो। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जो दिन दिन भर पैसे हाथ में लिए और घूमते हैं कि इसका मालिक कौन है, मैं जब तक खोज नहीं लूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा।
इसमें
नहीं, इसमें पाप नहीं है, मालिक को खोज के उस तक दे।
हाँ, पासपोर्ट
बिल्कुल सही,
उस पे गिर गया किसी का,
ये ठीक
दिख गया
तो हम क्या करेंगे?
हाँ, और उसको दे दें तो इसमें पाप तो नहीं है,
उसको देना बिल्कुल ठीक, लेकिन रख लिया या कहीं और डाल दिया, मैं ये कह रहा हूँ
गलत इंटेंशन से उपयोग में नहीं लाना।
गलत इंटेंशन नहीं, अच्छा इंटेंशन है आपका, फिर भी उपयोग दूसरा नहीं करेगा। मंदिर में डालने का तो इंटेंशन अच्छा है,
दान नहीं,
नहीं दान भी नहीं लगेगा और चोरी का पाप लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स या कि पैसे, पैसे के लिए दोनों के लिए, अगर मालिक को हम ढूंढ करके उसे देते हैं
वो तो एक सहायता हो गई उसकी।
हाँ, तो एक तरह से सहायता, मदद, वो तो अच्छा काम है, इसमें तो कोई बात नहीं।
मालिक ना मिले तो फिर वस्तु को वहीं रख दे, रखी
उठाई क्यों? मालिक को जो सको तो उठाओ, नहीं खोज सको तो पड़ी रहने दो।
इसमें भी थोड़ा सा अधिक क्लासिफिकेशन है, मान लो डॉक्टर साहब ने कहा कि पासपोर्ट मिले या कोई डॉक्यूमेंट्स मिले तो वो तो अपन दे सकते हैं, और उस पे एड्रेस है इसलिए, और मान लो मनी मिली कोई
तो संभव भी
नहीं, थोड़ा सा हो जाएगा।
उसमें एक चीज हो सकती है कि मैंने कुछ इस तरह का किया जाए कि वहीं पर हम ले, अगर हमें बहुत ज्यादा वो है कि कौन उठा लेगा तो वहीं पर ले करके और बैठे रहो, शाम तक वो व्यक्ति ढूंढता हुआ निकलेगा कहीं से कि मेरे गुम गए थे, तब उसके हाथ में
स्टेशन में जमा करा। चतुर्थ काल में तो संभव नहीं है,
तो फिर उठाना नहीं।
पंचम काल में,
पंचम
में तो संभव नहीं, बाकी आगे हो
तब फिर उठाना नहीं। अभी एक मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी एक प्रैक्टिकल हुआ विदेशी और भारत देश के लोगों का एक प्रैक्टिकल हुआ। अब उसमें विदेशी कौन कौन थे, सभी देशों के थे, तो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं कि 15-15 लोग चुने गए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा रिजल्ट आया है आपके भारत के लोगों का, कि उन्होंने 15 लोगों में से अधिकांश 10-12 लोगों ने तो मनी बैग जो पड़ा था उसको थोड़ा उठाया, उसमें पैसे देखे और वहीं छोड़ करके आगे बढ़ गए। कौन उठाया, अपन झगड़े में नहीं पड़ते। 15 में से 10 लोगों ने, बाकी जो लोग थे अधिकांश उनमें से एक आधे दो लोग थे जिनने नहीं उठाया, बाकी सब ने उठाया। उसमें से भारत के लोग कुछ थे जिन्होंने उस मनी बैग को जिसका है उस तक पहुंचाने की कोशिश करी, ये हमारी मानसिकता कि हम या तो हम पहुंचा देंगे या फिर हम छुएंगे, और वही हमारे सिद्धांत में लिखा हुआ है कि अनुवृत्ति है तो या तो छुएगा नहीं, और अगर छुएगा तो फिर जिम्मा लेगा कि वहां तक हम पहुंचा ही देंगे, अब चाहे हम अपना 100 काम छोड़ देंगे पर उसको उसके मालिक तक पहुंचा देंगे। ये व्रति व्रति व्यक्ति का तो इतना फर्ज बनता है। तो ये अचौरी हो गया, फिर उसके बाद जो है अब आ गया ब्रह्मचरी। ब्रह्मचरी अनुव्रत, जिससे हमने विवाह किया है उसके अलावा बाकी सबके प्रति क्या दृष्टि बनेगी, अपन उसमें पढ़ते हैं 10 लक्षण की पूजा में पढ़ेंगे। हाँ, तीन कैडर में डाल देंगे सबके लिए, चौथा कैडर नहीं है कोई भी, तीन में डाल देंगे कि अगर हमारे हमसे बड़ी है तो हमारे माँ के समान है, हमारे बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बिटिया है, ऐसा हमारे मन का भाव रहेगा तो हमारा ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य अनुव्रत की सबसे बढ़िया परिभाषा तो जयनंद कुमार ने लिखी, हमने बताई थी आपको, फिर से रिपीट करता हूँ, उन्होंने लिखी कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी माँ मानता हूँ। देखो, मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी माँ मानता हूँ, और अब तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे है कि मेरे बच्चों की माँ मेरी माँ हो जावे, मैं उसके समान मातृवत व्यवहार करूं, उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो। ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी, मातृवत। तो गांधी जी ने तो आखिरी समय पर बैठे हुए थे बाजू में, तो किसी ने कहा कि ये आपकी माँ है क्या, तो थोड़ी देर तो सोचते रहे, फिर बोले कि हाँ हमारी माँ है, हमको सुबह से नहलाती धुलाती भी, हमको भोजन वोजन कराती, शाम को हमारा बिछौना बिछा करके सुला देती है, हमारी माँ ही है अब। और उस दिन से जो है उन्होंने उनके साथ माँ के समान व्यवहार शुरू कर दिया था, बा के साथ बा। ये हमारी थीम ये है, इतनी ऊंचाई तक हमें पहुंचना है। क्रम क्रम से पहुंचेगा व्यक्ति, अपनी सारी आकांक्षाओं को किसी एक परिसीमित कर, जिस और फिर सामान्य परिभाषा जिससे विवाह किया है उसी तक हमारा संबंध है, बाकी सबके प्रति हमारा अच्छा भाव है, इसी का नाम ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। फिर उसके बाद परिग्रह परिमाण, ये थोड़ा सा कठिन है आज के समय में, परिग्रह को लिमिट में कर लेना। 10 प्रकार का परिग्रह है, बाह्य परिग्रह भी और अंतरंग परिग्रह भी। अंतरंग परिग्रह में तो ये है मिथ्यात्व है, तो अपन ने सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पहले कर ली है तो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह तो अपन मान के चले कि निकल गया। अब चार कषायें हैं तो उनको भी हम मंद करने में लगे हैं, नौ कषायें हैं, हास्य रति अरति जीवन पढ़ चुके हैं, इनको भी हम कम से कम कर रहे हैं मान लीजिएगा। तो अंतरंग परिग्रह की बात तो ये हो गई, और बहिरंग परिग्रह में कहते हैं क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्र और भांड, ये 10 प्रकार की चीजों को लिमिट कर लेना। इसमें सब संसार की चीजें आ गई, कल्टीवेटेड एरिया आपने कोई रख रखा हो उसकी लिमिट कर लो कि भाई कितने एकड़ रखना अपने को। फिर हाउसिंग, मकान रखें तो कितने रखना, एक रखना, दो रखना, चार रखना, पूरी जिंदगी में अपन ज्यादा से ज्यादा कितने बनाएंगे। तो आदमी दो मकान बनाता, तीन मकान बनाता, इससे ज्यादा तो कोई कंस्ट्रक्टर हो उसकी बात है ना, क्योंकि उसको तो बना बना के देना बिजनेस है, लेकिन सामान्य आदमी तो मकान की सीमा कर ली कि भाई एक है, मगर सीमा रख लेते दो मकान। जिनकी ऑनरशिप हमारे हाथ में है, पता नहीं हम दूसरे के घर में जाके कहां कहां रहेंगे, वो नहीं उसमें लेना। ऑनरशिप जो मकान आपके नाम से है वो, क्योंकि उसको लेकर आकुलता होगी, उसकी रख रखाव करना पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी सब, इसलिए कह रहे हैं कि मकान। फिर उसके बाद क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण सोना चांदी, और इसी में जो है कैश सब आ जाएगा, जितनी भी चीजें हैं सोना चांदी के अलावा, धातुएं जितनी हीरे जवाहरात हैं या कि आपके कैश है, ये सब लिमिट कर लिया कि सोना इतना रखेंगे, चांदी इतनी रखेंगे, अन्य हीरे जवाहरात इतने रखेंगे, पैसे इतने रखेंगे। भाई एक 10 लाख रुपए से ज्यादा अपने पास नहीं रखेंगे, मान लो एक साथ हम 10 लाख रखेंगे, और 10 लाख रखेंगे, 10 लाख से ज्यादा नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि अगर हमें कहीं 1 लाख रुपए की जरूरत है तो हमने निकाले खर्च किए, अभी तो 9 लाख बचे, अब 1 लाख और ला सकते हैं, कमा सकते हैं, उसमें कहीं डिस्टर्ब नहीं होता इसमें कोई कि अपना डिस्टर्ब हो गया हो। कैपिटल है हमारा कि 10 लाख से अधिक हम नहीं रखेंगे, इससे कम हो जाएगा तो उतनी पूर्ति कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ये हो गया हिरण्य स्वर्ण। फिर धन और धान्य, धन तो कहलाता गोधन, गाय वगैरह हम कितनी रखेंगे, और धान्य मतलब ब्री आदि, ब्री आदि मतलब ये अनाज, अनाज कितने, एक साल के लिए हम कितना रखेंगे, 10 बोरे 20 बोरे कलेक्शन करके कितना रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। एक साल के लिए रखता है व्यक्ति, फिर चेंज अगले साल फिर रख लेता है कि 10 बोरे रखना है, एक खत्म हो गया तो और एक आ जाएगा, उसमें कठिन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कठिन ज्यादा है, पर व्यक्ति ने उसको समझने नहीं की वजह से कठिन बना लिया। फिर दासी दास नौकर चाकर कितने रखेंगे, इनकी एक लिमिट कर ले।
वैसे ही अच्छा,
नौकर चाकर नहीं, लिमिटेड नहीं है। जब मकान बनवाते हैं तब एक साथ 50 लेबर लगता है एक दिन के लिए, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, मैं तो उसको मानता हूँ, लेबर आपने उपयोग किया है। आप ऐसे दासी दास नहीं मिलेंगे कि जीवन भर के लिए आपके आपने खरीद लिए उनके लिए दासी दास। अब तो ये सर्वेंट जो जिससे आप प्यून हैं आपके घर में है, तो ये बर्तन कि 100 बर्तन है घर गृहस्थी के सब, अब 100 से ज्यादा नहीं, 100 से ज्यादा लाएंगे तो इसमें से एक ना एक, जितने लाएंगे उतने इसमें से निकाल देंगे। ये अब बताइए, इसमें परिग्रह का परिमाण करने में कोई ज्यादा कठिनाई है क्या? इसमें तो बहुत आसानी है, ये परिग्रह परिमाण अगर हो जाता है तो फिर अहिंसा पलती है, झूठ नहीं बोलना पड़ता, इसी के लिए झूठ बोलना पड़ता है, इसी के लिए चोरी करना पड़ती, सारे पाप इसी के लिए, ज्यादा बढ़ जावे तो सारे व्यसन लग जाते हैं। हाँ, ज्यादा पैसा हो जावे तो उसका उपयोग कहाँ करें, तो व्यसन में लगाए, व्यसन में पैसा लगने लगता, नाप शनाप खर्चा होने लगता उसका, तो लिमिटेड रहने से। वर्णी जी कहा करते थे कि मैं दूने रख लो, जितते हैं उसका दूना परिग्रह करें। अभी नीरज जी आए थे, बता रहे थे कि आप ये व्रत दीजिएगा, परिग्रह का परिमाण पहले करवा दो लोगों का, और व्रत दो चाहे नहीं दो, परिग्रह का
जीवन भर का राशि दिया,
इसमें से रोज कम, रोज बता, हाँ रोज कम, अब रोज जो है कम कर, अब 50 जोड़ी कपड़ा रखे को पहनत 50, आज तो 4 जोड़ी बदलेंगे, 5 बदलेंगे बस हो गया। बर्तन जो है इतने सारे रखे, पर आज तो अपने भोजन के लिए 1 थाली 1 गिलास 2 कटोरी 1 लोटा रखेंगे, 5 ही रखेंगे, ये इतने ही हमारे बर्तन है, इतने की मांझने की और उसकी क्रिया करेंगे तो उससे आरंभ कम होगा। जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा आरंभ सारंभ पाप कम होगा, पाप को कम करने के लिए लिमिटेशन है और उसका कोई मेन।
वो बहुत सहज है महाराज जी, कहने में कठिन लगता है, सहज है, मन के भावों में किया जाता है,
ये बात है।
और किसने, आप हाथ भी मत हिलाइए, भावों में रखिए
तब भी हो जाए,
बल्कि संपूर्ण होगा भावों में रखा जाए।
महाव्रत की संज्ञा दी इसलिए उसको, अनुव्रति जो है बाकी चीजों को छोड़ देता है, इसलिए वो महाव्रति के समान है।
पांच अनुव्रत
अहिंसा व्रत है, लेकिन झूठ पर व्रत नहीं, सत्य सत्य अनुव्रत, अचौरी, अचौरी मतलब चोरी का त्याग, और ब्रह्मचरी और परिग्रह परिमाण, ये इस तरह पांच। कहीं कहीं पर आपको सुनने में मिलेगा कि भगवान पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म का उपदेश दिया, तो आप किसी कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, ये मान्यता श्वेतांबर मान्यता है। जो ये मानते हैं, हाँ वो बताता हूँ मैं, तो वो ये मानते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म अर्थात अहिंसा सत्य अचोरी और परिग्रह परिमाण, इन 4 का उपदेश दिया, परिग्रह के अंदर ही उसने स्त्री इत्यादि को रख लिया, इसलिए जो है ब्रह्मचारी व्रत नाम का कोई व्रत नहीं था, 4 ही थे। पर भैया ऐसा नहीं मानना, ये हमारी मान्यता नहीं है, हमारे 5 अनुव्रत आदिनाथ भगवान के समय से चले आ रहे हैं, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं। और दूसरी चीज, कोई कहे कि एक व्रत ले लें तो हो जाएगा, कहते अकेले अहिंसानुव्रत नहीं लिया जा सकता, न अकेले सत्यानुव्रत लिया जा सकता, पूरे जब एक होएगा तो 5ों होंगे, इसलिए कितनी चीजें हो गई, 5ों व्रत एक साथ लिए जाते हैं, 4 व्रत कभी नहीं हुए किसी भी काल, किसी तीर्थंकर के काल में नहीं हुए, और 5ों का स्वरूप अपन ने समझ, इतना ही जो है। फिर इनके सप्लीमेंट्री जो हैं, अब इन 5ों के पालन के लिए सप्लीमेंट्री भी हैं 7, वो अपन वो फिर पढ़ेंगे बस, कि अभी नहीं है। जो भी आचरण के बारे में मैंने शुरू किया उसके बारे में कोई प्रश्न हो जो अपने रोजमर्रा के जीवन में आती कई बातें उनमें हम किस तरह से जैसे अहिंसानु व्रत है तो क्या हम उसका पालन कर सकते हैं किस हद तक कर सकते हैं या कि सत्यानुव्रत है अचौर्यानुव्रत है ब्रह्मचर्यानुव्रत है और परिग्रह का परिमाण। परिग्रह के परिमाण में एक चीज कल अपन ने थोड़ी सी नहीं ध्यान दी थी, एक्चुअली वो परिग्रह का परिमाण नहीं, वो इच्छाओं का परिमाण, उसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत है। क्योंकि परिग्रह तो वो है जिस चीज में हमारी मूर्छा होती है, वो परिग्रह है। और चीजों का रखा रहना, किसी धर्मशाला में रह रहे हैं तो धर्मशाला में रह रहे हैं तो परिग्रह नहीं कहलाएगी। किसी और दूसरे के वस्त्र हैं वो अपन ने वायदा पे दूसरे के अपने मित्र के यहाँ गए हैं और उनके यहाँ दो चार दिन रहना पड़ा है और उनके कपड़े पहन लिए तो वो परिग्रह नहीं कहलाएगा। जिसको हम अपने लिए जिसके हम मालिक बन जाते हैं, जिसकी हमारी ऑनरशिप है,
संग्रह अपने लिए संग्रहण करना
नहीं, ऑनरशिप बस।
अच्छा।
हाँ, उसकी मालिकियत हमारी है। वैसे तो पजेसिवनेस तो बहुत सारी चीजों की, मैं एक अभी डिस्कशन कर रहा था तो उसमें पजेसिवनेस अपने पोजीशन में तो बहुत सारी चीजें रखे हैं अपन। एक ट्रेजरर है, मान लीजिएगा बैंक का अकाउंटेंट है, उससे तो करोड़ों रुपए उसके हाथ से रोज आते हैं और उनकी वो पूरी संभाल रखता दिन भर के लिए, लेकिन उसको वो अपना मालिक नहीं मानता है,
वो ट्रस्टी है।
हाँ, वो ट्रस्टी है। ऑनरशिप होने, ऑनरशिप के मायने हैं परिग्रह, जिस पर हम अपना अधिकार रोक देते हैं, जिसको हम अपना जिसमें अपना ममता भाव जिसमें अपन अपना रोक देते हैं, ऐसा कह लीजिएगा मूर्छा का भाव, ये मेरा है। फिर उसके संवर्धन संरक्षण इन सब चीजों की अपने को चिंता होना शुरू हो जाती है। वो चिंता जितनी कम इच्छा रहेगी उतनी कम चिंता होगी, जितनी ज्यादा इच्छा रहेगी उतनी चीजों की चिंता भी ज्यादा होगी। इसलिए इच्छा का परिमाण है, मेरी अनंत इच्छाएं हो सकती थी, मैंने उनको सीमित कर लिया। चीजों के सीमित करने से इच्छाएं सीमित हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन इच्छाएं सीमित होने पर चीजें अपने आप सीमित हो जाएंगी। क्योंकि कई व्यक्ति के पास में बहुत सारी चीजें नहीं है, नहीं है तो क्या वो निष्परिग्रही है? कहते नहीं, उनके पास तो है ही नहीं, पर उनकी आकांक्षा तो देखो उन सब चीजों की हो सकती बहुत सारी। और कोई व्यक्ति जिसके पास अनाप शनाप, उसको पता ही नहीं कितनी चीजें पड़ी हैं, उसको उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, पड़ी है पड़ी रहेंगी, चली गई चली गई। ऐसी जो उसके इच्छाओं के निरोध की प्रक्रिया है वो कहलाएगी अपरिग्रह की तरह। इसलिए परिग्रह परिमाण से ये नहीं समझना कि चीजों का परिमाण कर लेना है, चीजों के साथ साथ इच्छाओं का भी परिमाण करना है। और ये बहुत आसान है, इच्छाएं एक बार अपनी आदमी सोच ले, मतलब एक बार कि भाई अपने को इतना रखना, जैसे कल ही अपन ने चर्चा करी थी कि भाई 100 कपड़े रखेंगे पहनने के, ओढ़ने के नहीं, पहनने के कपड़े हम कितने रखेंगे? तो कहते 100 रखेंगे, चलो 100 जोड़ी रखेंगे, एक बार में जितने कपड़े पहने जाते वैसे वैसे हम 100 सेट रख लेंगे, चलो इतना भी कर लो। अब इसके बाद इच्छा अब तो कम से कम होनी चाहिए, इच्छा फिर भी हो सकती है, कहते इच्छा होगी पर हम उस शिक्षा की पूर्ति तब करेंगे जब हमारे पास से एक हम निकाल देंगे, तब वो शिक्षा की पूर्ति तो करेंगे। 101 वाले की इच्छा नहीं, हमको 100 की इच्छा है, फिर इन 100 में से हम एक ठो दो ठो निकाल देंगे तब हम उसकी इच्छा करेंगे। ऐसा नहीं कि 101 नंबर की तो इच्छा कर ली फिर एक निकाली, नहीं, एक दो पहले ही निकाल दो, रिक्त रखो उस जगह को ताकि उसको फिर से फुलफिल किया जा सके। ये उसमें अपने पास 10, वो जैसे बात आई थी कि कैपिटल अपने पास, अपन ने सोचा 5 लाख का कैपिटल रखेंगे और अपन ने 4 लाख रुपए का बिजनेस शुरू कर दिया, एक अपने पास फ्री डिपॉजिट था, 4 लाख बिजनेस में लगा है, उससे एक दिन ऐसा हुआ कि 4 की जगह हमारा वो दूना हो गया, सीधा 8 लाख हो गया। क्या करें, एक पहले से था और 8 ये आ गया है, प्रॉफिट होकर के 9 हो गया, 5 से तो ज्यादा हो गए, 4 निकालोगे इसी समय, 5 हमारे फिर भी सेफ है, तो संतोष रहेगा कि मेरे पास तो खराब थोड़ी हुई, वो तो ज्यों के त्यों। ये सेटिस्फेक्शन इच्छाओं के रोक लेने से सेटिस्फेक्शन आना शुरू। और या फिर व्यक्ति जो व्यक्ति संतुष्ट होगा वही इच्छाओं का निरोध कर पाएगा, और जो निरोध करेगा वही संतुष्ट होगा। ये आत्मसंतोष के लिए प्रोसीजर है श्रावक के लिए, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत होती है। इस वजह से हर चीज की लिमिटेशन कर ली, गाड़ी रखेंगे तो कितनी रखना भाई, ऑनरशिप कितनी रखना, मकान रखना कितनी, एक लिमिट तो कर लो, अभी 2 है 4 रख लो, चलो पंडित जी का मैंने आपसे कहा था कि वो कहते थे कि जितना है उससे दूना ना, इसकी इतने की गुंजाइश है कि दूने हो सकते हैं, एक गाड़ी है दो और रख लो, दो गाड़ी रख, 10 लाख रुपए हैं अपने पास, चलो 20 लाख की सीमा रख, इतनी सीमा कर लेने से परिग्रह का परिमाण, और परिग्रह का परिमाण अगर हो गया तो फिर पांचों पापों से अपन बच गए। परिग्रह की वजह से ही सारे पाप होते हैं, हिंसा झूठ चोरी ये सब जो है परिग्रह की वजह से, उसी को लेके बोल रहे हैं। तो प्रैक्टिकेबल है, 5 अनुव्रत और 3 मकार का त्याग कर दे अगर कोई, तो वो 8 मूल गुण श्रावक के हैं, पाक्षिक श्रावक के। और अगर इन 5 अनुव्रतों के साथ वो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत और ले ले, तो फिर वो व्रति श्रावक हो गया, मतलब वो दूसरी प्रतिमा को धारण करने वाला हो गया। ऐसा भी आता है श्रावक के 12 व्रतों की जहाँ बात आई, ये अभी तो 5 अनुव्रत की बात आई, पर श्रावक के 12 व्रत भी होते हैं। तो वे 12 कौन से हैं? सप्लीमेंट्री, वो जो हमें एडिशनल कह लीजिए या सप्लीमेंट्री कह लीजिएगा, तो 7 और हैं, वो शील व्रत कहलाते हैं, 7 शील व्रत और 5 अनुव्रत। या कि 7 शील व्रत में कौन कौन से, तो कहते हैं 3 गुण व्रत और 3 शिक्षा व्रत, जिनसे अनुव्रतों के गुणों में और अधिक वृद्धि हो वे गुणव्रत कहलाते हैं। अनुव्रत में वृद्धि करने वाले हैं गुणव्रत, इसीलिए उनका गुणव्रत है, गुणकारी हैं वो, अनुव्रतों को संभालने वाले हैं इसलिए गुणव्रत हैं। और जो मुनियों के आचरण की शिक्षा देते हैं वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। ये अनुव्रत के लिए ही है दोनों। और अनुव्रतों में मेन क्या है? अहिंसा। मैंने कुल मिला के देखें तो अहिंसा के लिए ही सारे व्रत हैं। 5 अनुव्रतों में अहिंसा मुख्य है, 4 अनुव्रत उसी अहिंसा के लिए हैं, और इन 5 अनुव्रतों के लिए ये 7 गुण व्रत और शिक्षा व्रत मिला के 3 और 4 ये काहे के लिए हैं? ये सब अनुव्रतों के लिए हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अहिंसा के लिए। हमें हर एक व्रत के पालन में अहिंसा का पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, आकर के जाएंगे, ऐसा था, अभी ध्यान आ गया।
हाँ,
फिर उसके बाद तो हमने उतना ध्यान नहीं, एकदम रहा कि नहीं जाने का था तो शुरू किया।
नहीं कोई बात नहीं, एक घंटा है मेरे पास, तो मैं क्यों उपयोग न करूं।
तो इसको पूरा अपन समझ रहे थे कि 5 जो अनुव्रत हैं, अनुव्रतों में, हाँ, 5 अनुव्रतों में अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण। परिग्रह परिमाण को हमने एक नाम नहीं दिया था कल, इच्छा परिमाण भी उसका नाम है, इच्छाओं का
परिग्रह परिमाण एक शब्द है।
हाँ, परिग्रह परिमाण, लिमिटेशन ऑफ ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस लोभ का परिसीमन है, इच्छा मतलब लोभ है, इच्छाओं का परिमाण है वो, पर हमने उसको वस्तुओं से जोड़ लिया इसलिए हम परिग्रह,
तो मन हमारे पास ना हो परिग्रह और हम मन में विचार करें तो भी खराब होता है।
यही चीज हम समझने की थी कि परिग्रह से हम लोग क्या लेते हैं, ये चीजें।
हाँ।
नहीं, परिग्रह का मतलब चीजें नहीं है, ये तो भूल जाइएगा, हमारे यहाँ परिग्रह के मायने चीजें है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जितनी चीजों के प्रति मूर्छा है आपकी वो परिग्रह है, जितनी मूर्छा नहीं है वो परिग्रह नहीं है, वो चीजें हैं। हम दूसरे की पेंसिल लेते हैं, दूसरे के पेंसिल छोड़ी दूसरे के घर में जाते हैं, एज ए गेस्ट रहते हैं कि नहीं, उसके घर की सारी चीजों का उपयोग करते हुए भी क्या मान के चलते हैं, मेरी नहीं है, उपयोग भर करना है। दूसरे के घर में 10 दिन रह के आ गए हैं, लेकिन कभी भी उनकी चीजों को वैसे संभालने की इच्छा नहीं होगी, उन चीजों के चले जाने पर वैसा कोई दुख नहीं होने वाला, अपनी थी नहीं, जाए तो जाए, इनकी है, पड़ी है तो पड़ी है, कितना मन का फर्क रहता। इसी तरह से यदि अपने घर की चीजों का भी हम ऐसा उपयोग करते हैं, तब फिर हम सारा कुछ होने के बाद भी इच्छाओं को लिमिटेड कर लिया है, इसलिए हम परिग्रह परिमाण के अंदर आ जाएंगे, या कि हम निष्परिग्रही कहलाएंगे। खरीद के लाएंगे तब तो है ही, खरीद के लाए हैं उसकी चिंता है, दूसरे के लिए लाते ना, माँ रखती है बिटिया के लिए सोना, नहीं रखती ला करके, कि ये सब बिटिया के लिए है, इतना इतना देना पड़ेगा इतना, और लड़के के लिए, लड़के के लिए रख लेती कि बहू आएगी तो उसके लिए रख लेते हैं, और उसके अपने पहनने के लिए उसके लिए कुछ नहीं है, ये क्या चीज है? हाँ उसका तो लगेगा,
लेकिन लेकिन
दोस्त तो लगेगा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों के बीच में हमारे भावों में कितना फर्क है। बहू के गहने भी रखे हैं और बिटिया के गहने भी रखे हैं और अपने भी रखे हैं, तीनों के प्रति क्या आपका गहनों का भाव एक ही है? ये मेरे हैं, तीनों में अलग अलग रहेगा, ये मेरे हैं, इनकी ज्यादा देखभाल करेंगे, बहू के हैं चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिटिया के चले जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, वहां के लोग कहेंगे कि गई थी उतरे मायके सो अब उतरी चले आओ, तो उसकी चिंता ज्यादा होगी। आप एक जनरल सा अपन अपने उसमें लगा के देखें, उतनी चिंता नहीं रहेगी। बहू के लिए बहुत सारे कपड़े लाए होंगे तो उन कपड़ों को हम कैसे भी यूज कर लेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने कपड़ों को जरा संभाल के करेंगे कि बहू तुम हमारे मत पहना करे, वो सब खराब कर दोगे, तुमसे तो आते ही नहीं पहनते अभी। ये क्या चीज है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपके लिए। हम अपने लिए बनवा के एक शर्ट लाए थे, वो बड़े भैया ने पहन ली तो हमको बहुत पीड़ा होगी कि बड़े भैया बस कभी भी अपने तो पहनते नहीं, हमारे पहन लेते हैं ये कपड़े। इसका मतलब उन कपड़ों के प्रति वो हमारे हैं, और जब उनके हम पहन के जाएंगे तो ज्यादा तवज्जो नहीं करेंगे उसके, कहीं भी बैठ जाएंगे, आएंगे तो उतार के टांग देंगे, आप जानो आप धोना उनको, हमारी थोड़ी हम पहन के भर गए थे। ठीक, ये इससे हमें ये सीखना है कि हम चीजों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि चीजें हमारे पास कितनी रखी। क्योंकि अभी अभी प्रश्न हुआ था, कल शायद प्रश्न किया था किसी ने कि अब दूसरे परिग्रह का परिमाण कर लिया, दूसरे के घर गए हैं, अब उनके कपड़े भी पहनना पड़ेंगे, कभी 16 के हैं ये है तो उसमें परिग्रह का परिमाण तो बढ़ गया, हमारे घर तो अलग रखे हम 50 पहले ही से, और हमने इनके घर एक और पहन लिया तो बढ़ गया क्या? कहते नहीं, वो आपके नहीं है, ऐसे तो आप अपना घर छोड़ करके धर्मशाला में दर्शन दे रहे तो क्या होगा उसका, आपको मकान थोड़ी कहलाएगा कि आपके दो मकान हो गए, एक वो था और एक ये, मकान नहीं है, इतना फर्क है। इच्छाओं का परिमाण, लिमिटेशन,
भाव
तो है ही, हमारा पूरा धर्म ही है क्रियात्मक कम है। हम एक व्यक्ति बहुत सारा सामान रखे हुए दिखाई पड़ सकता है और एक व्यक्ति के पास अपने उपयोग की भी चार चीजें नहीं है, पर दोनों के भावों में देखना पड़ेगा कि चार चीजें नहीं होते हुए भी हजार चीजों की आकांक्षा उसके भीतर है तो वो निष्परिग्रही नहीं है, और एक व्यक्ति हजार चीजें रखे है, आए तो आए चली जाए तो चली जाए, कोई ज्यादा उनके ध्यान नहीं रखता है, अपने उपयोग में लेता है और कोई दूसरा भी ले लेवे तो कुछ दिमाग में जरा भी बात नहीं आती कि इसने क्यों अपने उपयोग में ले ली, तो कहलाएंगे वो निष्परिग्रही। ये परिग्रह कब बन जाता है?
नहीं बता सकते नहीं। कि
ये पीछे जो है, पीछे परिग्रह बन सकती है, कमंडल परिग्रह बन सकता है, यदि कोई ले गया और संकलेश आपको हो गया तो ले गया तो ले गया, मैं तो यहाँ से उठूंगा नहीं क्योंकि बिना इसके तो उठ नहीं सकता, जब दूसरी आ जाएगी तो देखेंगे, ले गए तो ले गए, कोई कमंडलू है उधर रखा हुआ है, लाओगे तो ले लूंगा, नहीं लाओगे तो ले जाओ, किताब है किताब रखी हुई है आप पढ़ने ले जाते हैं ले जाओ, कोई बात नहीं, वापस लाएंगे तो मैं तकाजा करने नहीं जाऊंगा कि मेरी किताब आपने ली थी और आप वापस करके, मेरी थी कब? पढ़ने के लिए आपने ली थी, मैंने भी पढ़ने के लिए किसी से ली थी, बात खत्म हो गई। मेरे से लोग कह रहे थे कि आप जरा किताब वगैरह का ध्यान रखा करिए, किसको दी है और लिख लिया करिए, मैंने कहा ये नहीं होगा मेरे से, दे दी तो दे दी। हाँ कई बार ऐसा होता ना, जब अब किसी ने कहा कि ये वाली किताब है क्या भाई, किसी को दे दी, किसको दे दी तो हम उससे पालें ना, बोला मैं कोई याद नहीं किसको दे दी, दे दी अपन ने तो बोले लिख लिया करे, हमने कहा ये हिसाब बनाएंगे तो फिर तो घर हो गया पूरा। हमेशा ही इतना, अभी तक इतने वर्ष हो गए, कई बार मेरे दिमाग में आए भी कि लिख लेना चाहिए मुझे किताब, ध्यान रहता है कि इनको हमने पढ़ने दी थी, तो कोई दूसरा मांगता तो उसको बता सकते कि भैया इनको आप वहां से ले लेना, उनके पास है पढ़ने दी थी, फिर पता नहीं क्यों मन में ये आता है कि नहीं क्या करना अपने को, ये एक और दिमाग में लगा हुआ है कि अब डायरी मेंटेन कर रहे हैं कि साहब इनके पास हमारी वो किताब है, इनके पास ये किताब है, आ गई नहीं आई तो नहीं आई, ये इससे मालूम पड़ता है कि हमारी आसक्ति कितनी, हमारी ऑनरशिप कितनी, सैकड़ों चीजें होते हुए भी, या कि दूसरा अपन ले लें, मालिक वो है चीजों का जो चीजों को दूसरे को दे सके, वो सच्चा मालिक है और ये तो गुलामी है। परिग्रह हमें गुलाम बनाता है और निष्परिग्रह परिग्रह परिमाण हमें मालिक बनाता, वाकई मालिक। ऑनरशिप हम कह जरूर रहे हैं पर वो ऑनरशिप नहीं है, उसकी गुलामी है, क्योंकि चीजों को हम दे ही नहीं पा रहे हैं दूसरे को, तो हम गुलाम है चीजों। अगर दूसरी तरह देखा है, एक उदाहरण आता है इसका कि वो थे शायद रायचंद जी का, कि वो अपने मोक्षों के साथ चले जा रहे थे और एक गाय के गले में रस्सी बांधे हुए और एक आदमी पकड़े हुए चला जा रहा था, तो उनने पूछ लिया कि क्यों भाई, कौन बंधा है, आदमी बंधा है कि गाय बंधी? उन्होंने कहा जनाब इतनी सी बात तो आपको दिखाई पड़नी चाहिए, गाय बंधी हुई है, आदमी हाथ में लिए। कहने लगे अच्छा ये बताओ अगर रस्सी छूट जाए तो कौन किसके पीछे भागेगा? क्लियर हो जाएगा उस समय, मालूम पड़ जाएगा कि कौन बंधा हुआ है। गाय नहीं भागेगी आदमी के पीछे, आदमी भागेगा मेरी गाय। इतना आसानी से समझा दिया उन्होंने कि ये हमारी आशक्ति, ये हमारा परिग्रह है, और अगर आप नहीं भागते हैं तो परिग्रह नहीं है आपका, वो था दूसरे को दे दिया।
दूसरे को जैसे महाराज ने दे दिया, तो जैसे अपने एक लिमिट रखा हुआ है 1 लाख का, मगर अपने जो दूसरों को दे दिया 50,000 दे दिया, तो वो फिर 50,000 उससे कम हो जाएगा या?
हाँ तो हम 50 और ले सकते हैं कहीं से भी, कमा सकते हैं उसी से।
दे दिए मतलब कि रिटर्न लेवल बेसिस
देंगे, क्योंकि लेकिन 1 लाख, 1 लाख से बाहर की कोई चिंता नहीं मुझे, लेकिन 1 लाख इसलिए लिमिटेशन कर ली है कि इतने की चिंता रह जाए। अब अपने को चिंता कितनी है? 1 लाख की। इच्छा कितनी है? 1 लाख की।
हाँ वो ये
लोन का है
कि मैंने किसी को 10 लाख रुपए लोन दे दिए। अच्छा, वो तो मेरे हैं, वो तो वापस करेगा, वो तो इन्हीं के जुम्मे हैं।
तो 10 लाख की सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए?
नहीं, वो तो 10 लाख की सीमा के बाहर है कि नहीं ये जवाब,
हाँ ये बता दीजिए।
10 लाख आपके पास
नहीं, ये कह रहे ना
लिमिट रखना,
ये कह रहे ना कि 1 लाख की लिमिट रखी थी, 50,000 किसी को दे दिए लोन पर उठा दिए, 50 से हम अपना काम चला रहे हैं, 50 से वो चला रहे हैं, 50 का वो ब्याज ला कर, वो हमारे हैं वो, तो उसमें क्या बात है, 50 का ब्याज ला करके देगा वो कल के दिन 60,000 रुपए देगा, 60,000 रुपए जैसे ही देगा वो, 50 हमारे पास पहले से थे, हम कहेंगे भैया ये 10,000 तो अलग करो, 50 तो ले लेते हैं। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
मतलब लोन भी होगा आप ये चाहते कि आप 10 हमारे पास हैं, 10 लोन दे दिए तो 10 भूल गए हैं,
नहीं नहीं ऐसा
कृष्ण ये था।
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और डोनेशन में फर्क है,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोनेशन
एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये अपन ध्यान रखें।
इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो ये है कि
इन्वेस्टमेंट और डोनेशन में फर्क है, वो अपन इन्वेस्ट किया है कि 50 लगाए हैं, 50 वापस आएंगे, तो 100 लेके आएंगे, तब ब्याज सहित आए
तो आपकी प्रॉपर्टी, जब तक वो खा ना जाए।
सही,
खा ना जाए
उसकी पूरी चिंता आपको रहेगी।
हाँ,
जितनी चीजें रहेंगी उतनी हमें उनकी चिंता करना पड़ेगी। हम चाहते हैं कि चिंता कम हो, इसलिए हम चीजों को भी कम करते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि चीजों की लिमिट करने के बाद हमारी आसक्ति और बढ़ ना जाए। कई बार 10 चीजों में हमारी आसक्ति थोड़ी थोड़ी होती है और 2 चीजें जब रह जाती हैं तो उनमें 10 के बराबर आसक्ति हो जाती है, इसलिए खतरनाक है। कल तक 4 आइटम खाते थे, शांति से खा लेते थे, अब ये कहीं रह गया है तो उसको ऐसे खाते हो 4 से भी ज्यादा ग्रद्धता से, तो कहते इससे अच्छे 4 ही खा लो आप, ये इतनी ग्रद्धता से खा रहे कि वही खाते चले जा रहे हैं। ये सब अपने परिणाम अपने को खुद देखना पड़ेंगे कि हमारी कितनी आसक्ति है चीजों, चीजें कम करना नहीं करना भी हमारे ऊपर निर्भर है, पर चीजों के प्रति आसक्ति कम करना नहीं करना ये तो हमें पहले ध्यान, चीजें हम भले ही लिमिटेड कर पाए या नहीं, और हो ही जाएंगी चीजें लिमिटेड अगर हमारी आसक्ति कम होगी, हमारी इच्छाएं कम हो गई। ये
अनुव्रत की 5
अनुव्रत है, तो 5 अनुव्रत जो है बहुत आसान है मेरे ख्याल से, तो लोगों को मन बनाना चाहिए अनुव्रत। परिग्रह का परिमाण करने का मन जरूर बनाना चाहिए, एक बार शांति से बैठ करके जो है, और लिख के तो रख लेना चाहिए कि कितनी कितनी चीजें अपन रखे हैं, और इससे ज्यादा क्या अपने को जरूरत पड़ेगी कभी, तो इससे ज्यादा कितनी जरूरत पड़ेगी, तो चलो इतनी रख लेते हैं, क्या इतने में काम चल जाएगा, एक सरसरी तौर से, और साल भर इसकी प्रैक्टिस करके देख ली कि कहीं मन, मैं 10 लाख से काम करता हूं हमेशा, 10-20 लाख मेरे हाथ में आते जाते रहते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि 25 की सीमा रख लेता हूँ।
हाँ, वो एक लिमिट चाहिए, कायदा ये कहता है
करके देख लिए 25 की सीमा। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि ऐसा मन में आया हो कि यार 25 से तो काम नहीं चलता, 30 होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो ठहरो अभी अभ्यास कर रहे थे, बढ़ा लो, आकुलता नहीं करना, 30 रख लो, अभी तो अभ्यास था। और जिस दिन ये लगे कि नहीं अब इससे ज़्यादा मैं तो नहीं, कभी नहीं आया मन में कि 30 से ज़्यादा, उस दिन जो है बना ली कि भाई 30 लाख कैश से ज़्यादा नहीं रखेंगे। सोना चांदी सबकी सीमा होती, 10 प्रकार का परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह कहे गए, आज अपन ये बात एक्स्ट्रा उसमें जोड़ेंगे। परिग्रह परिमाण में जो है सामान्य रूप से गृहस्थ के लिए अंतरंग परिग्रहों की चर्चा नहीं आई है, उसके लिए बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रहों का लिमिटेशन है। पर इसके मायने इतने ही नहीं है, क्योंकि हमने आज नई उसके साथ जोड़ी है चीज की इच्छा का परिमाण करना, इच्छा परिमाण के साथ में ये आ जाएगा कि अंतरंग के परिग्रह भी हमने छोड़े हैं। अंतरंग के परिग्रह 14 हैं, बाह्य परिग्रह 10 हैं। 10 में अपन ने गिने थे क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 पढ़े थे ना कि नहीं, जनरल को पढ़े। अंतरंग परिग्रह में एक तो मिथ्यात्व है, हाँ, अश्रद्धा, कोई भी व्रत बिना श्रद्धा के नहीं होता। अपन जितने व्रतों की चर्चा कर रहे हैं वो सब सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा पूर्वक ही लिए जाएंगे, इसलिए अपना एक अंतरंग परिग्रह तो चला गया मिथ्यात्व है। फिर उसके बाद कहते हैं कि चार कषायें, कषायों में सबसे बड़ी कषाय है लोभ, दिखती है क्रोध लेकिन है सबसे बड़ी लोभ, तो लोभ पर चोट होगी हमारे परिग्रह परिमाण से, इसलिए हमें सबसे पहले उस लोभ को ही कम करना है। चारों कषायें हम कम करेंगे मतलब अंतरंग परिग्रह भी हमने छोड़े तो हैं। अंतरंग में जो हमारी मूर्छा है वो अगर हमने छोड़ी है तो सार्थक है हमारा बाह्य में परिग्रह का त्याग, अंतरंग परिग्रह के साथ ही बाह्य परिग्रह का त्याग हो। और हास्य, रति, अरति, ये अपन ने पढ़े थे, नौ कषायें हैं वो भी इसमें जुड़ेंगी, उनको भी कम करेंगे, क्योंकि कषाय कम हुई है तो ये चीजें भी कम।
9, 4, 13, 14
बस 14 ही परिग्रह हैं, अंतरंग के परिग्रह 14 हैं, तो इन पर भी अपना ध्यान होना चाहिए बहिरंग के साथ साथ।
आपने पहले बताया था मोह सबसे डिफिकल्ट होता है, आज बता रहे हैं लोभ सबसे डिफिकल्ट होता है।
क्या बताया था?
मोह कर्म है।
ये मोह कर्म का पूरा परिवार है बाबा, 28 का
पूरा परिवार,
ये सब खतरनाक है। वो हमने तो बोल्डनेस में कहा था कि सबसे खतरनाक मोहिनी कर्म है, और ये इनका 28 का पूरा कुलवा है परिवार जिसको कर ये सब खतरनाक है। अहंग माने कषायें और उनके साथ नौ कषायें और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन सब मिला के कितनी हो गई थी, 28 है मोहिनी। तो अगर कहेंगे विशेष रूप से तो कहेंगे मोहिनी सबसे खतरनाक, और फिर मोहिनी में भी मोहिनी की जो लोभ कषाय है सबसे ज्यादा, उसकी एक पार्ट है उसका, मोहिनी का एक हिस्सा है लोभ कषाय। सो माने चार कषायों में से लोभ सबसे ज्यादा, लोभ मोह का ही तो काम है, और क्या, मोह का एक 28 में से मोह की एक प्रकृति है लोभ, अलग कहाँ है। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत करिएगा कि
28 एक बिग ग्रुप में से छोटा,
एक छोटा उसमें सबसे बाद में जाता है तो लोभ जाता है 10वें गुण स्थान, सूक्ष्म लोभ, बाकी सब निपट जाती है 28 आखिरी में, जैसे ही लोभ समाप्त हुआ सूक्ष्म कषाय और 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया, बस
लोभ पाप का बाप होता
है। ये गुण स्थान हम बाद में पूछेंगे, हमें समझ
नहीं, गुण स्थान तो खैर अभी हम समझने की चीज है नहीं, बाद में अपने आप पूरा पढ़ लेने के बाद आप अपने आप कहेंगे कि ये बात थी, ये मुझे हाँ। अपन प्रक्रिया ही वैसी कर रहे हैं कि अपने आराम से ये अपने को व्रत समझ में आ गए ना, तो फिर अब एक जल्दी से मैंने मुश्किल से 10 मिनट में बता दूंगा 14 गुण स्थान पूरे और आसान रहे। आज अपन ये पढ़ना है, अपने को इसमें ऐड करना है कि अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए या सत्य व्रत की रक्षा के लिए या चोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण या इच्छा परिमाण की रक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो हमने ले लिए, पर इनकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, तो रक्षा बाड़ लगाना पड़ेगी, वो बाड़ की तरह या इनकी वृद्धि के लिए गुण व्रत होते हैं जिसमें दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये तीन व्रत आते हैं, गुण व्रत कहलाते हैं।
इनकी वृद्धि के लिए,
हाँ इनकी वृद्धि के लिए, अनुव्रतों के गुणों की वृद्धि के लिए या रक्षा के लिए जो व्रत लिए जाते हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। नाम ही उनका गुणव्रत है। उन गुणव्रत में तीन है, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ व्रत। हम दिशाओं की सीमा कर देंगे ताकि दिशाओं से बाहर हमसे ये पाप हो ही ना सके। पांच पाप से विरक्त होने का नाम व्रत है। अब मैं पांच पाप से तो विरक्त हो गया हूं, लेकिन अगर मैं अपनी प्रवृत्ति को अनलिमिटेड रखूंगा तो मेरे से तो कदम कदम पे पाप होने वाला है। मैंने लिमिटेड कर लिया। मैं दिशाओं की सीमा करता हूं कि दशों दिशाओं में कहां तक जाऊंगा। मैं उत्तर दिशा में जाऊंगा तो हिमालय तक जाऊंगा, मैं दक्षिण में जाऊंगा तो कन्याकुमारी तक जाऊंगा, इधर वेस्ट बंगाल जाऊंगा और इधर गुजरात जाऊंगा। कितनी लिमिटेशन, यानी मैं अपने देश की ही सीमाएं, मैंने दिग्व्रत में दिशाओं की सीमा करना है और देश व्रत में जहां रहते हैं उसको लिमिटेड कर लिया। देश व्रत एक निश्चित समय के लिए होता है, दिग्व्रत पूरे जीवन पर्यंत के लिए। देश व्रत में ताहू में फिर ग्राम गली, ये कहते हैं ना, जितनी बड़ी सीमा करके रखी थी जीवन भर के लिए उसमें से फिर और धीरे धीरे कम करते जाना, इसका नाम देश व्रत है। जितना हमारा माने एरिया लिमिटेड होगा उतना हमसे पाप भी कम होगा। उसके बाहर जो होने वाला था पाप वो तो नहीं होगा। हमने विदेश जाने का त्याग कर दिया है, अब विदेश जाने में जो जो पाप होता था या वहां जो व्यापार फैलाने में होता था वो सब मेरा बंद हो गया, तो अनुव्रत आसानी से पालन हो जाएंगे, नहीं तो आकुलता होगी, अनुव्रतों के पालन करने में दिक्कत होगी। और दिग्व्रत साथ में है तो दिक्कत नहीं होगी, मेरी तो एक सीमा है, इसके बाहर जाने में ऊपर नीचे की सीमा बनाना पड़ेगी, चारों दिशाओं की, चारों दिशाओं की और उनके अंग माने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से चारों दिशाओं और चारों उनकी विदिशाओं और ऊपर नीचे कितने जाएंगे। कोलार माइन 3 किलोमीटर है तो गोल्ड के लिए उससे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। 3 किलोमीटर आकाश में कितना जाएंगे, 15,000 फीट पर आकाश में उड़ता है, 20 पर उड़ता है मान लीजिएगा, तो 15 से 20 के बीच में उससे ऊपर जाने का नहीं। प्लेन में अगर नहीं बैठना है तो फिर वो भी खत्म। हिलॉक पे जाएंगे 5,000 फीट ऊंचा है आपके एवरेस्ट पर तो जाना नहीं है, एवरेस्ट पे जाने वाने का तो सवाल ही नहीं है, जाएंगे तो अपने शिखर जी जाएंगे, 5,000 फीट है। तो ये इस तरह से सोच लिया कि हम एक लिमिट में रखेंगे दिग्व्रत, अर्थात दिशाओं का लिमिटेशन कर लेना ताकि उनके बाहर के पाप से बचा जा सके। और कोई इसमें बड़ा नियम नहीं, सिर्फ दिशाओं की सीमा कर ले। फिर कहते हैं देश, भारत देश में ही रहूंगा, 4 महीने तो मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, और मध्य प्रदेश में भी जो है अब राजधानी है तो मैं भोपाल में ही रहूंगा 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, और अष्टमी चतुर्दशी आ गई है तो भोपाल से बाहर भी नहीं जाना है, और अब भोपाल से क्या, मुझे तो भोपाल के अपने इस मोहल्ले से बाहर भी नहीं जाना है। अष्टमी के दिन मंदिर जाऊंगा थोड़ा पास में वहीं, और अगर मन में ये आ गया कि नहीं भैया अपने को तो कहीं जाने नहीं आज, तो अब मंदिर भी सुबह दर्शन कर आए थे, दिन भर के लिए व्रत ले लिया कि अब तो अपने कमरे से अपने घर से बाहर नहीं जाए, इतना लिमिटेड कर दिया। क्यों, इससे क्या होगा, साधु कैसे रहते होंगे, एक ही जगह सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, इनका मन नहीं होता कि कहीं यहां वहां घूम घाम करके आ जाए थोड़ा। हमें वो भी उससे शिक्षा लेनी है कि कम से कम पाप हो रहा होगा, जितना प्रवृत्ति करेंगे, जितने यहां से वहां जाएंगे, जितने बड़े बड़े देव होते हैं उनकी गति कम होती चली जाती, अभिमान कम होता चला जाता, परिग्रह कम होता चला जाता, जबकि वैभव बढ़ता जाता है। देखना अपार वैभव है लेकिन कहते परिग्रह कम है, तो परिग्रह कम मतलब वो वैभव भी है और परिग्रह भी कम, अच्छे से अच्छी चीजें उनके पास है लेकिन कहते परिग्रह क्यों कम है, क्योंकि मूर्छा कम है, इच्छा कम है,
इच्छा परिग्रह
गति कम है। दूसरे स्वर्ग का देव जो है वो 16वें स्वर्ग तक भागा दौड़ करेगा, लेकिन 16वें स्वर्ग वाला एक आध बार अपनी देवांगना को रहने के लिए दूसरे स्वर्ग तक आए तो आए, नहीं तो उसको फुर्सत नहीं। वो कहता आपने इतने ठीक, और ऊपर वाले देव हैं सब हेमिंद्र वगैरह, वो कहीं जाते नहीं, अपना विमान छोड़ के नहीं जाते, जा सकते हैं साथ में नरक तक, जितना ऊंचे वाला देव होगा उतने अधिक जा सकता है लेकिन नहीं जाता, गति नहीं करता, अभिमान कम होता चला जाता है। ये किस बात की सूचना है, ये हमारे शुद्धता की, हाँ प्योरिटी की हमारी कहना चाहिए उसकी तरफ प्रयास है। तो दिग्व्रत हमें कहाँ ले जा रहा है, देश व्रत हमें कहाँ ले जा रहा है, उस प्योरिटी की तरफ ले जा रहा है कि हमने पाप का त्याग तो कर दिया लेकिन अब यहाँ वहाँ जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो हो ही। अब मैं एक बार गाड़ी में बैठ के जाऊँगा तो मैंने त्रस जीवों का तो त्याग किया है तो क्या अब गाड़ी छोड़ दूँ क्या? नहीं, त्रस जीवों का त्याग किया है पर संकल्प पूर्वक मैं मारूं त्रस जीवों को, इसका त्याग किया है। लेकिन आना जाना और जो अपन ने कल समझा था कि उद्योग करेंगे उसमें भी त्रस जीव मरेंगे तो वो वाली हिंसा तो नहीं छोड़ सकते, तो छोड़ी तो नहीं है पर अब लिमिटेड तो कर लो, एक दिन ऐसा करके देखो कि आना जाना कम हो जाए तो वो हिंसा से भी बच गए। छूट थी हालांकि कि आप आ जा सकते हैं पर हमने अपने को संभाल लिया, तो दिशाओं की सीमा कर ली, प्रदेश की क्षेत्र की सीमा कर ली और फिर कहते अनर्थ दंड व्रत पर्पस लेस सिंफुलनेस। हम वैसे जो है और थोड़ा सा आ जाए, सुनना है कि मैं, हाँ तो क्या कह रहा था,
अनर्थ
मतलब पर्पस लेस सिंफुलनेस। हम अभी तक जो पाप कर रहे थे उसका कोई ना कोई हमारा प्रयोजन था, हमने खाना बनाया है, हमने पूजा के लिए गए हैं और हम अपने काम और बहुत सारे काम हमने आरंभ के किए हैं, उन सब में हमारे द्वारा पाप हो रहा था उसका कोई वो नहीं है। लेकिन पर्पस लेस जिसका कोई हमारा मकसद ही नहीं, तो कहते इस तरह की चीज नहीं करना, ये अनर्थ दंड है। दंड का मतलब होता है मन वचन काय की क्रिया, मन वचन काय की ऐसी क्रिया जो अनर्थकारी हो, व्यर्थ भी और अनर्थकारी। व्यर्थ और अनर्थ में फर्क है, अर्थवान क्रिया तो करेंगे उसमें पाप होएगा तो वो क्षम्य है, लेकिन अनर्थकारी क्रिया जिससे अच्छा एक तो होती व्यर्थ कि व्यर्थ में ऐसा ले लेंगे अपन कि जैसे व्यर्थ और अनर्थ के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें, थोड़ा सा है तो दोनों में डिफरेंस पर कोई एग्जांपल लेकर के
उसको व्यर्थ में अनर्थ नहीं हो रहा है मतलब किसी का बुरा नहीं हो रहा वो बेस्ट,
हाँ,
बेस्ट
वेस्ट हो रहा है और इसमें तो वेस्ट होने के साथ साथ दूसरे को नुकसानदायक भी ऐसा हो गया। आपके पास कुछ सामान था जो कि खराब था, आपने उसको कचरा घर में लाके डाल दिया, है ना, ये व्यर्थ हो गया। लेकिन आपने उसी चीज को जो है दूसरे को दे दिया, खराब चीज थी, रोटी थी, खराब हो गई थी, विषाक्त हो गई थी, उसको आपने फेंक दिया,
वो अनर्थ
उस, हाँ रोटी थी, ऐसा अच्छा उदाहरण है कि रोटी थी आपके पास और आपके खाने योग्य नहीं थी, किसी के खाने योग्य नहीं थी, आपने उसको फेंक दिया,
वो व्यर्थ,
किसी के खाने योग्य नहीं फेंक दिया, आपने खाने योग्य नहीं थी फिर भी किसी को दे दी, वो खाएगा तो उसके लिए अनर्थ होएगा कि नहीं? तो कहते हैं व्यर्थ, उससे अनर्थ से बचना। पाप तो दिन भर में होगा पर अनर्थकारी पाप नहीं होना चाहिए जिससे हमारा कोई पर्पज ही नहीं सॉल्व हो रहा, ऐसा। तो कहते हैं पांच प्रकार का अनर्थ दंड हो सकता है, दुश्रुति, दूसरे के बारे में उसकी निंदा सुनने में आनंद लेना, क्या होने वाला है इससे, दूसरे की निंदा सुनने में रस ले रहे हैं, ये जो है ये ठीक नहीं, ये तो अनर्थ है, मन वचन काय की ये क्रिया ठीक नहीं है। अपध्यान, बैठे बैठे दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, इसका ऐसा हो जाए उसका वैसा हो जाए, ये अपध्यान, ये भी अनर्थ दंड, इससे कुछ होने वाला था ही नहीं, अपना कोई काम हो रहा होता तो बात थी, दूसरे की हार जीत का विचार करना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, खाली बैठे हैं और बुरा सोच रहे हैं, तो दुश्रुति, अपध्यान। फिर कहते हैं पापोपदेश, दूसरा अच्छे काम में लगा था और आप खुद तो अच्छा काम कर रहे थे पर दूसरे को लगा दिया काय में, पाप के काम में लगा दिया, उसको उपदेश दे दिया, अरे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, उसमें जरा अच्छा नहीं,
गलत उपदेश
दे दिया, पाप करने का उपदेश उसको दे दिया, उसका पाप बढ़ गया, उसके पाप को अपने और अधिक मैंने गहरा कर दिया। तो ये इसमें हमारा क्या सॉल्व हुआ, कुछ पर्पस सॉल्व हुआ क्या?
अपना कुछ बहुत सारे पाप बांध लिए,
मैंने अनर्थ कर लिया अपन, उसको ये कहेंगे अनर्थ। फिर कहते हैं हिंसा दान, ऐसी चीज नहीं देना जो दूसरे के हाथ में जाकर के और हिंसा में कारण बन जाए। हमारा जानकार है तो हम उसके हाथ में माचिस देंगे क्योंकि मालूम है कि दीपक जलाएगा, और गैर जानकार है आग लगा सकता घर में, तो हम उसको माचिस नहीं देंगे, हिंसा की चीज है, संभल के देंगे। व्रति व्यक्ति होगा तो व्यवहार देख के करेगा कि भाई ये चीज देना कि नहीं देना। आदान प्रदान जो है, जो जिनसे हिंसा हो सकती है वो चीजें अपने उपयोग में तो ले रहा है, अपने परिवारजनों के उपयोग में ले रहा है, जिस पे उसका विश्वास है उसको दे ले रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जिसके हाथ में पहुंच करके। अब एक मोटा मोटा हिसाब है कि हम तो विश्वास करके दे रहे हैं, अब आप गड़बड़ी करो तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं। अब आप दूसरे के लिए जो है सल्फाज दो कि आपके उसके लिए है दवाई डालने के लिए और आप उसको खा जाओ तो हम क्या करेंगे, देखना। तो पर हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा कि भाई ये चीज जो है अहितकारी भी है, अहितकारी है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना पहुंच जाए जो इससे अपना घात कर ले। तो ऐसी चीज से भी अनर्थ, ये भी अनर्थ करने वाली है, उससे बचना। प्रमादचर्या, जब तक बैठी है तब तक तो पंखा चला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उठ के चले गए, ख्याल ही नहीं करा पंखा चल रहा है, चलने दो, अपने क्या नल पानी ढो रहे हैं तो अब एक लोटे से काम चल सकता तो बाल्टी बाल्टी फेंक रहे हैं, ढोल रहे हैं पानी, तो ये क्या चीज है। चले जा रहे थे रास्ते से जो है और गाय खड़ी हुई थी बेचारी, अच्छे से उसको धक्का दे दिया, अपने आगे बढ़ गए, उसको मार दिया, उसको आगे बढ़, इससे क्या हुआ। ये पर्पस, ये सब प्रमाद चाहिए। चले जा रहे थे, कभी कई बार होता छोटा सा रास्ता है और दोनों तरफ पेड़ वगैरह लगे हैं, उसमें हाथ मारते चले जा रहे हैं, उसको तोड़ते हुए चले जा रहे हैं, ये क्या है। सब प्रमाद चाहिए, प्रमाद चर्या नाम का अनर्थ दंड। पांच प्रकार का अनर्थ दंड है, पहले दुश्रुति, अपध्यान, पापोपदेश, हिंसादान और प्रमाद चर्या। इन सब में अनर्थ ही होने वाला इन सब के भीतर आ जाता। गांधी जी के वो तीन थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो बुरा मत कहो में क्या आ गया, दूसरे की नहीं पापोपदेश, दूसरे को बुरा बुरा क्यों कह रहे हैं, पाप का उपदेश क्यों दे रहे हैं, और दुश्रुति बुरा मत सुनो, और बुरा मत कहो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो बुरा मत देखो में ये सब चीजें आ जाएंगी। प्रमादचर्या भी आ जाएगी और हिंसादान भी आ जाएगा और क्या बोलते हैं उसको अपध्यान भी आ जाएगा। अपध्यान मतलब बुरा ध्यान, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे की बुराई करना या एक अलग चीज हो गई। बुराई तो नहीं कर रहे हैं पर बैठे बैठे दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा है, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, इससे आपका क्या पर्पस सॉल्व होने वाला है, कितने कुछ नहीं होने वाला आपका, आपका तो अहित ही होने वाला है। तो ये अनर्थकारी, अपने मन वचन काय की अनर्थकारी क्रिया को छोड़ना, ये तीन हो गए। इससे क्या होगा, इससे हम पाप से बचेंगे। अगर हम ये चीजें करते रहेंगे और अनुवृत्ति है मान लो तो पाप बढ़ेगा, क्योंकि छूट तो है आपको। देखिए स्थावर जीवों को तो मारने का कोई त्याग व्याग आपने किया नहीं, त्रस जीवों के मारने का त्याग किया था, लेकिन आप इस तरह की चीज करते रहेंगे अनर्थ कि पानी ढोल रहे हैं या पंखा चला रहे हैं या अग्नि जली भी छोड़ रहे हैं, इससे क्या होगा, जी मरेंगे। और त्रस हिंसा को त्याग व्यथा थावर न सहार, एक लाइन में अगर याद, व्यर्थ स्थावर जीवों को भी हमें नहीं मारना है। तो ये अगर व्रत है अनर्थ दंड, तो व्यर्थ हमारे द्वारा जो होने वाली हिंसा है अनर्थकारी वो भी बच जाएगी। ये इस तरह से तीन गुण व्रत हुए। इसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं लग रही जो कि नहीं समझ में आई हो, मेरे ख्याल से आसान है, कोई इस तरह की चीज नहीं। चार शिक्षा व्रत और अपन समझ देते हैं ताकि पूरे 12 व्रत हो जाएंगे। चार शिक्षा व्रत जिनसे मुनियों के आचरण की शिक्षा मिलती है। सबसे पहला व्रत है सामाय, समता भाव रखना, इसका नाम सामायिक है। सामायिक का मतलब समता भाव, उतनी देर। असल में मुनि महाराज जी के तो समता भाव 24 घंटे है, पूरे जीवन भर के लिए उनने तय किया, इसलिए उनको हम श्रवण कह रहे हैं कि जो समतावान है वो श्रवण। अब हमें उनके जैसी शिक्षा लेनी श्रावक को, तो कहते घंटे भर आप भी वैसे ही रह के देखो, इसलिए सामायिक रख दी कि समता भाव आप भी रख के देखो, घंटे भर तो कम से कम समता भाव रखो, 48 मिनट तो शांति से बैठो। अगर समता भाव रखने के लिए कहते ऐसे नहीं होता हमसे, तो करो क्या करो, पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन करो। हमसे पंच नमस्कार का चिंतन भी नहीं होता, कहते राग द्वेष न करो। हमसे ये भी नहीं होता, अच्छी बात है तो पांच प्रकार के पापों का उतनी देर के लिए त्याग करके बैठो तो चुपचाप, इतना तो कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, जिसको बुंदेलखंड में कहते हैं कि खटकर्म नहीं करो, शांति से बैठो। खटकर्म हम सोचते थे कि क्या मतलब है खटकर्म, मतलब छठ का जो है छह, खट हो गया वो छठकर्म है वो, तो वो खटकर्म हो गया कहते कहते, खटकर्म नहीं करो मतलब पापकारी मत करो। छह ही प्रकार से पाप होता है, असी मसी त्रसी विद्या और वाणिज्य, कहते ये छहों कर्म छोड़ दो, शांति से बैठो। संध्या काल है, दोनों संध्याओं में सुबह शाम भगवान का स्मरण करना, पांच पापों का त्याग करना या राग द्वेष नहीं करना, समता भाव रखना, भगवान की वंदना इत्यादि करना या कोई पाठ पढ़ना, ये सब चीजें सामायिक में आएंगी, जिससे जैसा बने वैसा करें। और बड़ी से बड़ी चीज आ जाएगी जो आज बहुत प्रचलित है, आत्मा का चिंतन करना। अब भले ही बने चाहे नहीं बने, लेकिन कहने में तो आता कि आत्मचिंतन, आत्मचिंतन भी ठीक है, कोई सामायिक के मायने ये है आत्मचिंतन, लेकिन आत्मचिंतन के उपाय क्या है, कैसे करेंगे आत्मचिंतन? पहले पांच पाप छोड़ना पड़ेंगे, एक घंटे के लिए मेरा पांचों पापों का त्याग, अब खाली बैठे हैं क्या करें, पंच नमस्कार का स्मरण करेंगे, हैं राग द्वेष नहीं, बुरे विचार आएंगे उनको हटा देंगे, अच्छे विचारों को आने देंगे, अब अच्छे विचार आते आते जो है उसी अच्छे विचार में अपने आत्मा का विचार भी कर लेंगे, वो ही आत्मचिंतन हो जाए, अलग से कोई आत्मचिंतन। हिंसा झूठ चोरी, देखो
हिंसा सत्य
वो तो है, वो तो हो गए व्रत, व्रत इनके उल्टे, इन पापों से विरक्त होने का नाम ही तो व्रत है, हिंसा से विरक्त हो गए इसलिए अहिंसा व्रत आ गए,
लेट सुने होंगे इसलिए हमने नहीं सुना,
झूठ से आप विरक्त हो गए इसलिए आपको सत्य व्रत आ गया,
वही है
ठीक है ना। हिंसा नृतस्ते ब्रह्म परिग्रह विरतिर व्रतम, इन पांच पापों से मुक्त होने का नाम ही व्रत है, हिंसा के अभाव में अहिंसा आई है, झूठ के अभाव में सत्य आया है, चोरी के अभाव में अचोरी आया है, कुशील के अभाव में ब्रह्मचर्य आया है, परिग्रह के अभाव में परिग्रह प्रमाण आया है, ऐसा इतना। हाँ ये सामायिक के मायने समझ में आ गया, सामायिक की कई परिभाषाएं अपन ने बना ली जिसको जो, और सबसे एक और परिभाषा दी है कि अपने समय का सदुपयोग करना, ये बहुत सामान्य सी, समयम यस्य प्रयोजनम सह सामायिकम, संस्कृत में ऐसी व्याख्या होती, समय हाँ समय ही जिसका प्रयोजन है। समय के दो अर्थ होते, एक तो टाइम लिमिटेशन और एक होता समय मतलब आत्मा, ये जैन धर्म का टेक्निकल वर्ड है, एक सीख लीजिएगा, जैन धर्म में काल की सबसे छोटी इकाई का नाम भी समय है, और टाइम फैक्टर के लिए भी समय बोलते हैं, और आत्मा के लिए भी समय बोलते हैं, और समय के मायने अवसर भी है, अभी समय नहीं आया मतलब, और समय के मायने अवकाश भी है, अभी समय नहीं हमारे पास अभी अवकाश नहीं है,
समय
वो अतीत हो गया, वो अतीत का प्रतीक हो गया समय, भूकाल
में आ गया,
अब भूकाल में आ गया सब समय इस, तो समयम यस्य प्रयोजनम, समय ही जिसका प्रयोजन है, समय मतलब आत्मा, तो उन क्षणों में हमारा आत्मा का कल्याण ही प्रयोजन है, या समय 48 मिनट करूंगा बस, समय करनी है 48 मिनट करो, हमारा प्रयोजन समय का है, समय का सदुपयोग कर रहा हूं मैं, तो अगर कोई पूछता है सामान्य रूप से तो हम कह सकते हैं कि समय का सदुपयोग करना भी सामायिक है, समय का सदुपयोग करने के कई ढंग है, आत्मा का चिंतन भी किया जा सकता, पांच परमेष्टि का विचार भी किया जा सकता, कुछ नहीं बनता तो कम से कम अच्छे विचार तो किए जा सकते, बुरे विचार से बचना, अच्छे विचारों में क्या हो सकता है, तो कहते अच्छे विचार हमने शिखर जी की वंदना करी थी, चलो फिर से याद करते हैं कैसे कैसे गए थे, और फिर टोंकी वाली आ गई थी, फिर कुंतला, अरे वहां पर ऐसा ऐसा भी हो गया था, वो सब याद आ जाएगा, तो उस अशुभ को हटा देना और जो उसमें से अच्छा है उसको रख लेना, ये हो गया 48 मिनट आपकी यात्रा हो गई, इस तरह से शुभ में रहे, उतनी देर आपने पाप नहीं करा, बस यही सामायिक हो गई। अब ये सोचो इसमें थोड़ा सा कि अपन को श्रावक को 48 मिनट ये करने में दिक्कत होती है, मुनि महाराज को पूरे 24 घंटे ये करना है, ये कई काम है कि मेरा मन अशुभ में ना जावे, मन वचन और काय तीनों को बाहर से आपके जैसा दिखाई पड़ेगा, सब कुछ कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, खा रहे पी रहे बात कर रहे हैं, और एक व्यक्ति तो कहने लगे कि आपकी हमें ज़्यादा परेशानी मालूम पड़ी कि हमारी तो के लिए एक फैमिली है और चार आठ जने हैं, आपके तो इतने सारे लोग हैं, आपको सबको ध्यान रखने पड़ा, क्या कर सकिए आप। सोचो आप कितनी अनाशक्ति रखना पड़ती है। आपको तो 10 चीजें रखो और उन 10 चीजों में आशक्ति है, यहाँ तो हजारों चीजें हैं, हजारों चेतन अचेतन सब प्रकार की चीजें हैं। आदमी देने तत्पर है कि आप तो ये पेन और ये पेंसिल और ये डायरी और आप जो लेना चाहो जो आपको, और हम भी आपके हैं, आप हमें भी ध्यान रखो, हमारा भी पूरा ध्यान रखो। देखो आप इतना सब होने के बाद भी उन सब के बीच अनाशक्त, ये तो सामान्य बात नहीं है। समता परिणाम रखना, समता परिणाम ऐसे ऐसे अकेले बैठे बैठे समता परिणाम रखना एक अलग चीज है, और इतना अधिक सब फैलाव हो जाने के बाद भी जब उठाया पीछे का मंडल तो पीछे मुड़ करके मैं फिर इन्हीं के बीच रहता, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनका हमेशा सानिध्य बना रहे हैं, आप सोचेंगे तो आपको पुण्य होने वाला और मैं सोचूंगा तो मुझे पाप होगा, आप सोचेंगे इनका सानिध्य हमेशा बना रहे तो आपका तो लाभ ही लाभ, और मैं सोचूं कि ये कितने अच्छे श्रावक हैं, ये मेरी बात कितने अच्छे से सुनते हैं और ये मुझे कितनी सुविधाएं देते हैं, मैं इन्हीं के बीच रहूं, तो कहते हो गया शुरू, आपका संसार शुरू हो गया, इसी का नाम संसार। बहुत स्पष्ट सा है, कोई वैसी मैंने अपन बड़े उससे चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन है इसमें, कहीं कोई ऐसा नहीं, मैंने कितनी बारीकी हमारे जैन दर्शन में एक साधु के लिए कितनी बारीकी से बात रखी, तब ना ये चल रहा है, पंचम काल के अंत तक चलेगा, अकेले बाहर से नहीं है, बाहर की क्रियाएं तो है ही, बाहर से इतना टाइट है 28 मूल गुण, और भीतर से सबसे बड़ी चीज कि अपने परिणामों को संभाल के रखना, नहीं तो सारा खेल खत्म, फिर आप फिर अपन फिर वही बात आएगी कि गुणस्थान गिर गई, इसको कहते गुणस्थान, आपके जो क्वालिटी थी जिसकी वजह से हमने आपको एक कैडर दिया था, वो हाँ क्वालिटी की कैटेगरी थी, वो आपकी डाउन हो गई, यही कहलाता गुणस्थान। ऐसे कई बार आप समझ अपने आप समझ में आने लगा लास्ट लास्ट तक ये चीज है, तो समता भाव रखना एक निश्चित समय के लिए। दूसरा है सामयिक, सामयिक के बाद फिर दूसरा प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास नाम का व्रत है, प्रोषध का मतलब होता पर्व, पर्व के दिन उपवास करना प्रोषध उपवास। पर्व कौन से हैं? शाश्वत, शाश्वत पर्व, असली चतुर्दशी बस दो ही हैं शाश्वत पर्व अपने यहाँ पर, और बाकी तो 10 लक्षण 16 कारण ये इनको नहीं माना, शाश्वत पर्व है अष्टमी चतुर्दशी, तो हर महीने की अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषध रखना अर्थात वो उपवास रखना प्रोषध के दिन, और एक दूसरा अर्थ भी लिया है, प्रोषध मतलब एक बार भोजन करना, तो कहते हैं पर्व के दिन तो उपवास करना लेकिन उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद एक बार भोजन करना, ये भी प्रोषध उपवास, ये जरा बड़ा है मतलब इसमें कठिन है, और सामान्य रूप से तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर, तो श्रावक जो है जब 12 व्रतों को पालन करता है तो ये भी ले लेता है एक दिन तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करके अपने आत्मा के निकट बैठे, एक दिन तो कम से कम ऐसा करें कि पूरा दिन हमने चर्या अपनी मुनि महाराज के समान की है, कोई पाप नहीं किया, क्योंकि आरंभ सारंभ करेंगे दिन भर तो पाप होने वाला है, और परिग्रह की भी लालसा रहेगी जितना हम खाने पीने